हम सत्यार्थ प्रकाश की श्रृंखला चल रही थी, जो सीरीज चल रही थी, आज उसका पांचवा भाग है। हमने पिछली बार चर्चा की थी जो रिचुअल्स हम करते हैं वो क्यों करते हैं और उसके पीछे कुछ और मकसद होता है, पर हम क्योंकि ट्रेडिशनली उसको करते आ रहे हैं, हमारे लिए उसका जो गोल है, जो जो उसका लक्ष्य है, वो बेकार हो जाता है और हम रिचुअल पर बड़ा रिजिडिटी दिखाते हैं। उसकी डिटेल्स के बारे में थोड़ी चर्चा हुई थी। आज स्वामी जी की जो प्रसंग है वो है अग्निहोत्र। द सेकेंड डेलिवाइट इज देवयज्ञ विच कंप्राइजेस ऑफ अग्निहोत्र and association with learned men and service done to them. जो यज्ञ है, यज्ञ का अर्थ होता है जनरली आमतौर पर जो हमें पता है यज्ञ का अर्थ वो है अग्नि में आहुति देना मंत्र पढ़ के, पर रियली यज्ञ का ये अर्थ नहीं है। यज्ञ का अर्थ है कि कोई भी काम जिसमें तीन चीजें इंक्लूडेड हो, तीन चीजों का कॉम्बिनेशन को यज्ञ कहते हैं, दाने देव पूजा संगति करणी, जहां कुछ सेक्रीफाइस होता हो, कुछ दिया जाता हो, कुछ त्यागा जाता हो, जहां अपने से बड़ों की पूजा होती हो, अपने से बड़ों में हमारे मां बाप से लेकर के ईश्वर तक सब आते हैं जिनका भी हमारे लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूशन है। और तीसरा है संगतिकरण, जो ज्ञानी है विद्वान है जो कुछ जानते हैं उनके साथ मिलना जुलना, उनसे कुछ ज्ञान लेना, या अगर कोई ज्ञानी विद्वान नहीं भी है तो हमारे जो अपने फैमिली मेंबर्स हैं बा जो हमारे कम्युनिटी मेंबर्स हैं इसी वो इकट्ठा मिलना। इसीलिए आप देखेंगे यज्ञ कभी अकेला नहीं होता है, सन्यासी यज्ञ नहीं कर सकता है, ब्रह्मचारी यज्ञ नहीं कर सकता, गृहस्थ कर सकता है जो शादीशुदा है, कम से कम दो चाहिए, पति पत्नी यज्ञ में बैठ सकते हैं। यह नियम इसीलिए था कि यज्ञ का जो एक थर्ड पार्ट, जो जो एक तीसरा भाग है वो है संगति करना, मिलना जुलना, इकट्ठा होना। हर गृहस्थी के लिए, हर हाउस होल्डर के लिए पांच तरह की यज्ञों की व्यवस्था की गई, जिसकी चर्चा हम और किसी दिन करेंगे, आज सिर्फ इंट्रोडक्शन कर देता हूं। ब्रह्म यज्ञ मतलब रोज कुछ ना कुछ स्वाध्याय करो, पढ़ो और ईश्वर की भक्ति करो। देव यज्ञ जिसकी चर्चा आज हम करेंगे, जो आप आहुति देते हैं अग्नि में, इसी को देव यज्ञ कहते हैं। देव यज्ञ का अर्थ होता है देवताओं के लिए कुछ त्याग करो और उनका रिस्पेक्ट करो और उनसे मिलो। देवता कौन है? जिनका भी हमारे जीवन में कुछ कंट्रीब्यूशन है उन्हें हम देवता कहते हैं। इसकी चर्चा हम बार बार कर चुके हैं। देवो दानात् वा दीपनात् वा द्योतनात् वा दिवस्थानो भवति इति वा। जो कोई हमें कुछ देता है, जो कोई हमारे लिए कुछ कंट्रीब्यूट करता है, जो कोई हमारे जिंदा रहने में, हमें आगे बढ़ने में, हमें प्रकाशित होने में कुछ योगदान देता है, वो हमारे लिए देवता है। ईश्वर और देवता दो अलग अलग चीजें हैं, जिसको अंग्रेजी में हम जब ट्रांसलेशन करते हैं, देवता भी गॉड है, ईश्वर भी गॉड है। इसीलिए बेचारे जो हमारे मजबूरी होती है कि हम गॉड के लिए ईश्वर के लिए दूसरा शब्द बताने के मजबूर होते हैं, सुप्रीम गॉड वगैरह वगैरह, क्योंकि यहां जो भारतीय कंसेप्ट में जो देवता का अर्थ है वो उसका अर्थ ईश्वर नहीं है। देवता का अर्थ कोई भी, कोई इट मे बी ए बींग और थिंग, वो कोई प्राणी है या कोई वस्तु है जिसका भी हमारे जीवन में कुछ योगदान है वो हमारे लिए देवता है और उसको पूजा करना हमारी ड्यूटी है, हमारा धर्म है। पूजा करने का अर्थ होता है संतुष्ट करना, टू मेक हैप्पी, किसी को खुश करना। वो अलग बात है कि हम पूजा करने की तरीका बड़ा गड़बड़ चुनते हैं। हम मानते हैं कि भारतीय विचारधारा में और हिंदू संस्कृति में कि दुनिया में कोई भी वस्तु है हम सबको देवता मानते हैं। इसीलिए आप देखेंगे अनपढ़ से पढ़ा लिखा आदमी तक हमारे यहां गाय बकरी से लेकर के पेड़ पौधे पानी तालाब नदी सबको हम देवता मानते हैं। हो सकता है लोग भूल चुके हैं कि उनको देवता क्यों मानते हैं। आजकल तो देवता इसीलिए मानते हैं कि उस कुछ बदले में कुछ मिल जाए, ना करे तो कहीं पाप ना लग जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। उसका मतलब इतना था कि जिनका भी हमारे जीवन में कुछ योगदान है वो हमारे लिए देवता है और हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी सेवा करें, हम उनका ख्याल रखें। पेड़ का पूजा तभी होती, पेड़ की पूजा पेड़ में धागा बांधने से नहीं होती है। पेड़ की पूजा पेड़ की खुशी होती है जब पेड़ में पानी डाला जाए गर्मी में, पेड़ को बचाया जाए, पेड़ को ना काटा जाए, पेड़ को फलने फूलने दिया जाए, पेड़ की पूजा यही है। मां बाप की पूजा आरती उतारने से नहीं होता है, फोटो लटका करके माला डाल के आरती उतारने से नहीं होती है। जिंदा मां बाप को रेस्पेक्ट किया जाए, उनका ख्याल रखा जाए, उनको उनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो तो उनको दूर किया जाए और सबसे बड़ी बात है उनके साथ बैठ के थोड़ी बातचीत किया जाए, उनको थोड़ा टाइम उनके साथ शेयर किया जाए, जो बुजुर्ग मां बाप होते हैं ये उनकी पूजा है। देव यज्ञ के बाद पितृ यज्ञ हर गृहस्थ व्यक्ति को का तीसरा यज्ञ होता है कि अपने पिता माता का यज्ञ करे, मतलब पिता माता के लिए यज्ञ आहुति न डाले, ना पिता माता को आहुति के रूप में मत डाल दें। मतलब पिता माता का यज्ञ का अर्थ है कि पिता वही यज्ञ का अर्थ है जिसमें तीन चीजें हो, जहां कुछ दिया जाता हो, जहां रिस्पेक्ट हो और जहां मिलना जुलना हो। मतलब पिता माता के लिए कुछ हम कंट्रीब्यूट करें, उनके लिए समय टाइम शेयर करें और उनका रिस्पेक्ट करें, पितृ यज्ञ है। इसी तरह नृ यज्ञ मनुष्य यज्ञ जो हमारे आसपास के पड़ोसी हैं व समाज है या दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले लोग हैं जिनके लिए हम कुछ हेल्प कर सकते हैं, कुछ मदद कर सकते हैं, ये मनुष्य यज्ञ है। और भूत यज्ञ है जो संसार में जितने तरह के प्राणी हैं, पशु पक्षी कीटे मट, वो उनके लिए भी हम अगर कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो है भूत यज्ञ। तो आज की जो जो चर्चा है वो देव यज्ञ है। देव यज्ञ इस अग्निहोत्र को कहते हैं, इसमें तीन चीजें हैं। जब आप ये अग्नि जला के आहुति डालते हैं उसमें तीन चीजें आप जरूर करते हैं। एक तो अग्नि में आप आहुति डालते हैं, नंबर एक ये देना होता है दान। और एसोसिएशन होती है लर्नर्ड मैन, इसी बहाने जब भी आप यज्ञ करते हैं आप अपने घर में व जहां बाहर करते हैं आपको कोई पुरोहित या ब्राह्मण व विद्वान मिलता जिनके साथ आप चर्चा करते हैं। हमेशा ध्यान रखिए अपने घर में जिसको भी आप हवन करने बुलाइए उसको हवन करके मत जाने दीजिए जब तक वो 10-15 मिनट ना बोल दे, या तो आप उसे बुलवाइए, ये कर्तव्य है, यज्ञ अधूरा है। तीसरा है कि सर्विस डन टू देम, और दूसरा है कि आप कुछ सेवा करिए संसार में किसी, जो बड़े बड़े यज्ञ होते हैं और आज भी होते हैं जहां जहां यज्ञ होते हैं उसके साथ साथ वो अन्नछत्र चलता है। अन्नछत्र का मतलब होता है जहां 24 घंटे खाना बनता है और कोई भी आता है उसको खाना खिलाया जाता है, ये यज्ञ का एक हिस्सा होता था। इसे हम अग्निहोत्र कहते हैं। जो हम आहुति यज्ञ करते हैं जो सामान्य यज्ञ रोज सुबह शाम, उसका टाइमिंग है दोनों टाइम कम से कम संध्या में यज्ञ होता है। संध्या का अर्थ आपने पिछले बार सुना, संधि का समय, ऐसा समय जहां दो टाइम एक साथ मिलते हैं दिन और रात, वो दो ही होता है, एक तो सुबह एक शाम को होता है। तो सुबह शाम पर यज्ञ रात को नहीं किया जाता है, तो सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त से पहले करने की विधान है। कुछ सवाल जवाब है जो आपके मन में भी उठते हैं तो स्वामी जी खुद सवाल करते हैं और खुद उसका आंसर देते हैं। बट बेनिफिट accrues from the performance of होम, होम मतलब यज्ञ, जिसको नॉर्थ इंडिया में हवन कहते हैं, साउथ इंडिया में होम कहते हैं, जो अग्निहोत्र का एक रूप है। इस हवन करने का क्या फायदा होता है, क्यों हम हवन करें? तो स्वामी जी लिखते हैं,
All persons know that impure air and impure water cause diseases, and the diseases give pain to the creature, while scented air and water are conducive to health and annihilation of diseases and ensure happiness.
जब हम घर में यज्ञ करते हैं या कहीं भी करते हैं तो उससे सुगंधित हवा बाहर होता है. घी के साथ खास तरह की जो सामग्रियां होती है, अब वो अलग बात है, अमेरिका में भारत से सामग्री मंगानी पड़ती है, वो सामग्री एक्चुअली वो सब चीजें मिला हुआ है या नहीं, वो जो इंग्रेडिएंट्स मिलना चाहिए वो अलग बात है, पर एक खास उसकी लिस्ट होती है कि किस टाइप की जो सामग्री में आप आहुति डालते हैं वो किस टाइप के इंग्रेडिएंट्स उसमें किस तरह के उसमें चीजें मिली होनी चाहिए. जैसे कुछ सुगंधित फूल पौधे पत्ते उनके सूखा हुआ पाउडर होता है, कुछ जड़ी बूटियां होती हैं जो हर्बल्स होते हैं जिनका कुछ मेडिसिनल इफेक्ट होते हैं, कुछ ऐसी जड़ी बूटियां या छाल पत्ते होते हैं जो जो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किसी कारण से जिसको इनहेलिंग करने से इनहेल करने से फायदा होता है. तो इस तरह के जो सामग्री तत्व है इनको मिलावट करके ये सामग्री बनाया जाता है. यह अलग बात है कि आजकल बनाया जाता है कि नहीं जाता अलग बात है, पर सामग्री ऐसी बनती है या बननी चाहिए या बनती थी. उन सामग्रियों को एक खास प्रकार के एक खास टेम्परेचर के आग में घी के साथ जब डाला जाता है तो वायुमंडल को एक तरह के सुगंधित करता है. जैसे बदबू, आप अगर एक रास्ते में टायर जलाते हैं वो इतना दूर दूर तक बदबू फैलाता है और नाक आपके बंद हो जाते हैं. कोई गंदी चीज जल रही हो तो उसकी बदबू से जैसे नाक बंद हो जाता है, आप रह नहीं सकते हैं. इसी तरह कोई अच्छी चीज जले तो उसकी सुगंधित उसका भी सुगंध होता है. तो स्वामी जी कहते हैं कि वायुमंडल को जो दूषित वायुमंडल है जो इम्प्योर एयर है या वाटर है उसको शुद्ध करने के लिए इसकी बड़ी जरूरत होती है, और ये शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी और मन के लिए भी बड़ा जरूरी है. क्योंकि इस तरह इसमें जिस तरह के पहले जमाने में जिस तरह की लकड़ियां डाली जाती थी, अब यहां तो लकड़ियां भी उसकी निश्चित ये कि किस किस पेड़ के लकड़ियां डाली जानी चाहिए, चंदन के आम के वगैरह वगैरह उसकी लिस्ट है, पलाश के. क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ सैंडल पेस्ट टू समवन और गिविंग ऑफ क्लैरिफाइड बटर एटसेट्रा फॉर ईटिंग इज वेरी बेनिफिशियल. There is no wisdom in wasting these things by consigning them to fire. बहुत सारे लोग आप में से हमारे में से मन में सोचते होंगे या पूछते हैं, घी लोगों को खाने को नहीं मिलता और घी फूंक देते हो यज्ञ में, चंदन लकड़ी लगाओ तो वो ये जो आजकल आप टीका लगाते हैं ना लाल पीला, ये टीका तो फैशन है पर एक्चुअली टीका लगाने की जो परंपरा इंडियन कल्चर में, इसका कोई हिंदू रिलीजन से रिलेशन नहीं, इसका इंडियन कल्चर से रिलेशन था कि चंदन की घिस करके लगाते थे, क्योंकि भारत एक गर्मी प्रधान देश है, ग्रीष्म प्रधान, वो बेसिकली वहां गर्मी बहुत होती है और ज्यादातर समय लोग चंदन लेप करके नहाने के बाद दिन में कई बार पूरे शरीर में लेप कर रखते थे, इधर इधर बॉडी में सब जगह लगा कर रखते थे. और क्योंकि हमारे यहां एक परंपरा है, हर अच्छी चीज को धर्म के साथ जोड़ दिया जाता है. जैसे आप देखेंगे हर वैष्णव लोग जो होते हैं जो जो विष्णु को मानते हैं, रोज सुबह उठने के बाद नहाने के बाद एक तुलसी के पत्ता खाते हैं या अपने खाने में एक तुलसी डालते हैं, और हमारे यहां उसका बड़ा महत्व होता है. क्यों? ये इसका धर्म से लेन देन नहीं है, इससे तुलसी खाने से डालने से कोई विष्णु खुश होने वाला नहीं है, पर तुलसी शरीर के लिए इतनी जरूरी जरूरत की चीज है, जो व्यक्ति रोज तुलसी का पत्ता या अदरक या शहद इन चीजों का यूज करता है उसको साइनस की, उसको कोल्ड की जितने तरह के प्रॉब्लम्स बहुत कम होंगे या होंगे तो इसको लेने से ठीक होता है. इसी तरह आप देखेंगे जो शिव के भक्त हैं वो बेल के पत्ते खाते हैं अपने या प्रसाद में डालते हैं, बेल के पत्ता क्यों हमारे धर्म में इतना महत्व है? क्योंकि बेल के पत्ता पेट की, आप अगर रोज बेल के पत्ता खाते हैं या नहीं भी खाते हैं, आपके पेट खराब है, किसी भी तरह की पेट की बीमारी हो, वो डिसेंट्री हो, वो डायरिया हो, किसी भी तरह की, अगर आप कच्चे बेल के पत्ते चबा के खाते हैं, पीस के खाते हैं, तो या ज्यादा हो या रिसेंट आपका पेट साफ हो नहीं रहा है, किसी भी मामले में वो लाभ लाभ देता है। तो जो चीजें डेली यूज करने से, रोज यूज करने से जिनका फायदा है, उसको हमने धर्म के साथ जोड़ दिया। इसी तरह चंदन को हमने धर्म के साथ जोड़ दिया। आज भी देखेंगे जो ट्रेडिशनली बहुत ब्राह्मण है, कंजर्वेटिव है, बिल्कुल पुराने जमाने की तरह चलते हैं, खास करके दक्षिण भारत में भी देखेंगे, बनारस साइड वगैरह देखेंगे, वो नहाने के बाद चंदन ही लगाते हैं। अब बाकी लोगों को तो कुछ पता नहीं है, क्योंकि कुछ लगना चाहिए, तो भाई आप हनुमान वो लाल टीका लगाता है तो हम भी लाल टीका लगाएंगे। उनको पूछो क्यों, ये हमारा कल्चर है। वे कल्चर अपने आप नहीं बन जाता, उसके पीछे कुछ बैकग्राउंड होता है। तो चंदन के जगह धीरे धीरे बाकी चीजें ले गए। तो क्वेश्चन पूछा कि चंदन ला करके हम लेपे क्यों नहीं, क्योंकि उन दिनों एसी तो होता नहीं था, गर्मी में ठंड पाने के लिए ज्यादा से ज्यादा आप ये ताड़ के पत्तों को या खजूर के पत्तों को सी करके ये पंखा बनाते थे, हाथ की पंखा, और उसको घुमाते रहते थे, थोड़ी बहुत चंदन लेप कर लेते थे तो थोड़ा सुकून मिलता था। ये प्राचीन काल की समस्या है, उन दिनों एसी पंखा और बिजली की पंखा भी नहीं हुआ करता था। तो चंदन हम लगाए क्यों नहीं, घी खाए क्यों नहीं, इसमें क्यों यूज करें, ये तो बकवास है। तो स्वामी जी उसका उत्तर देते हैं, यू नेवर हैव सेड सच थिंग्स हैड यू बीन कन्वर्सेंट विद द साइंस ऑफ मैटर। उसका पढ़ लीजिए, इसका अर्थ है, भावार्थ है कि दुनिया में कोई वस्तु कभी मिटता नहीं है, वो सूक्ष्म हो जाता है, और मॉडर्न फिजिक्स इस नतीजा पर पहुंचा है कि जो मैटर है वो भी इटर्नल है, वो भी जो जो पदार्थ है, वस्तु है, वो भी नित्य है, सिर्फ उसका फॉर्म बदलता है। आप पेड़ पेड़ के रूप में नहीं रहेगा, पर पेड़ की जो अस्तित्व है, पेड़ की जो सत्ता है, पेड़ की जो एग्जिस्टेंस है, वो नहीं मिटता है। पेड़ लकड़ी के रूप में होता है, लकड़ी कुर्सी टेबल के रूप में होता है, आप उसको आग में जलाएंगे वो राख बन जाएगा, राख को भी पीसेंगे वो पाउडर बनेगा, आपको उसको पीसेंगे, आप पीसते जाइए वो एटम बने, वो छोटे छोटे सटल फॉर्म में बदलता जाएगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन एटम बनता जाएगा, और उनको आप स्थूल बनाना है, आप उनको एक फॉर्म देना है, तो आप उनको जोड़ते जाइए तो फॉर्म बनते जाएंगे। तो दुनिया में कोई चीज नष्ट नहीं होता है। बिहोल्ड वर एवर होम इज परफॉर्म इट्स गुड स्मेल रीचेस द नोज ऑफ ए पर्सन स्टैंडिंग एट ए प्लेस रिमोट फ्रॉम इट, सो इज द केस विथ ए बैड स्मेल। जब भी आप एक सुगंधित द्रव्य को आग में डालते हैं, दूर तक उसकी खुशबू जाता है। जब एक बदबू वाली चीज को, खराब स्मेल वाली चीज को डालते हैं, वो भी दूर तक खराब स्मेल जाता है। इसका मतलब है कि वो जो उसका जो स्मेल है, अगर आप उसको आग में डालते हैं, वो ज्यादा शटल फॉर्म में होता है और ज्यादा दूर तक जाता है। यही अग्नि का धर्म है, यही आग का धर्म है। इसलिए जस्ट कैलकुलेट देयर बाय दैट ए सब्सटेंस बर्न्ड इन फायर इज रेरिफाइड एंड एक्सपैंड्स विद द एयर एंड रिमूव्स द इंप्यूरिटी एंड डिस्टेंट प्लेस। जब एक खास कमरे में, घर में आप आग जलाते हैं, तो उसके आसपास का वायु गर्म होकर के वो खाली कर देता है, उसके जगह ये जो सुगंधित वायु है वो स्थान लेता है, और इस तरह वो उसको शुद्ध भी बनाता है और सुगंधित भी बनाता है। क्वेश्चन है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, अगर यही हवन करने का लक्ष्य है, देन इट कैन बी सर्व्ड बाय कीपिंग इन द हाउस सैफ्रन मस्क फ्लावर्स एंड अदर सेंट्स। अगर यज्ञ करने का यही लाभ है कि आपका घर का वायुमंडल शुद्ध होता है, खुशबू वाला होता है, तो घर में हम अगरबत्ती जला देंगे, हम वो कस्तूरी मस्क रख देंगे, हम खुशबू वाले फूल रख देंगे, बस हो गया उसमें, फिर इसको करने की क्या जरूरत है। दे विल मेक द एयर वेल सेंटेड एंड विल प्लीज द इक्विपमेंट, तो ये भी खुशनुमा बनाएंगे, बहुत खुशबू फैलाएंगे और घर के लोगों को खुशी मिलेगी। तो ये यज्ञ करने की क्या जरूरत है सुगंधित रखने के लिए? आंसर है दैट सेंट हैज नॉट द पावर टू ड्राइव आउट द एयर ऑफ द हाउस एंड रिप्लेस इट बाय प्योरर एयर एज इट डज नॉट पोसेस पावर टू रेरिफाई। इट इज ओनली फायर दैट हैज द पावर ऑफ डिकम्पोजिंग इम्प्योर सब्सटेंसेस एंड आफ्टर रेरिफाइंग द एयर थ्रोइंग देम आउट एंड ड्राइंग इन प्योर एयर इन इट्स प्लेस। आप कस्तूरी घर में रखे उसमें खुशबू फैलेगा, पर उसके घर की जो आपकी इम्प्योर एयर है, जो अशुद्ध वायु है, वो बाहर नहीं जाने वाला। तो आग जलने से वो इम्प्योरिटी खत्म होती है, वो बस वो एयर का, वायु का, वस्तु का जो रेरिफिकेशन होता है तो वो बाहर जाता है, उसके जगह ये सुगंधित द्रव्य, सुगंधित वायु लेता है। इसीलिए यज्ञ करने की जरूरत है। इट इज ओनली द फायर दैट हैज द पावर ऑफ डिकम्पोजिंग इम्प्योर सब्सटेंसेस। ये अग्नि का ही धर्म है जो अशुद्ध चीजों को दूर करके शुद्ध चीजों को मानता है। चलिए हमने मान लिया कि यज्ञ से वातावरण शुद्ध होता है, एटमोस्फियर शुद्ध होता है, प्योर होता है, सुगंधित होता है। मंत्र क्यों पढ़े फिर? चलिए हम आग डालें, आग में आहुतियां डालते जाए, जितना मर्जी लकड़ी डाले, सामग्री डाले,
the recitation keeps them fresh in the memory, it helps the study of the Vedas and their preservation। meri awaaz last tak pahunch rahi hai? Okay, mantra ko sath jodne ka labh ye karan tha ki isi bahane jo log hum log ved adi shastron ko nahi padh pate hain, padhne ka mauka nahi milta ya ichcha nahi hoti hai, kam se kam isi bahane वो वेद के काफी सारे मंत्रों को सुनेंगे बार बार। अगर जितने ज्यादा हवन करेंगे उतने ज्यादा सुनेंगे, जितने टाइप के हवन करेंगे उतने तरह के मंत्र सुनते हैं। और उन मंत्र क्या है? मंत्र का अर्थ होता है विचार, थॉट्स। वेदों के जो जो विचार है वो मंत्रों में जो छुपा हुआ है, वो विचार हमारे जीवन में बड़े काम में आने वाले चीजें होती है। जैसे आपके विवाह संस्कार होता है, वेडिंग सेरेमनी होता है, उसमें जो, ये तो आपको पता है कि हमारे संस्कृति में कोई भी काम बिना होम या हवन के नहीं होता है। हवन क्यों करना जरूरी होता है? हवन के बहाने मंत्र आते हैं, और मंत्र से का जो अर्थ है, जब वो अर्थ को समझते हैं, वो अर्थ उस सेरेमनी से रिलेटेड होते हैं। जैसे वेडिंग सेरेमनी में, विवाह में जितने भी मंत्र पढ़े जाते हैं, अगर सब मंत्रों को कोई कपल पढ़े समझे, या जो शादी कराने वाला जो पुरोहित है वो उनको समझाए, और उनमें से दो चार मंत्रों का विचार भी अगर उनके अंदर चला जाए, मतलब वो उसको हजम करके डाइजेस्ट कर सके, तो आगे के जो उनकी जो जो विवाहित जीवन है वो बड़ा सुंदर होता है। हर यज्ञ के समय जो
ओम ओम, हाँ सॉरी थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस के लिए। तो यज्ञ के समय जो मंत्र पढ़े जाते हैं, उन मंत्रों की जब अनुवाद या व्याख्या होती है, इसी बहाने लोग वेद के मंत्रों के विचारों को जानने का मौका पाते हैं, वैसे तो कोई मौका मिलता नहीं। नंबर दो, इसी बहाने वेद आदि शास्त्र सुरक्षित रहते हैं, उनका प्रिजर्वेशन होता है। नहीं तो आप और हम कभी, अगर ये थोड़ी बहुत पूजा पाठ की व्यवस्था नहीं होती, तो खास करके जो इंडियन कम्युनिटी है वो अपनी चीजों से इतना दूर भागता है, उसको ये अंग्रेजों की हर बुरी से बुरी चीज बड़ा प्यारी लगती है, अपनी चीजें इतनी बुरी लगती है, खास करके जो उसके पुरानी चीजें हैं वो दूर भागता है। कम से कम इसी बहाने वो धर्म के डर के मारे वा यज्ञ के बहाने वो कुछ मंत्र तो सुनता है, और अगर उसका मन करे तो उनको अर्थों को समझने की कोशिश करता है। यज्ञ में जो मंत्र पढ़े जाते हैं इसीलिए कि वो आपके दिमाग में कुछ विचार दें और इसी बहाने शास्त्रों की सुरक्षा हो। अगला प्रसंग है, इज इट ए सिन नॉट टू परफॉर्म दिस होम, क्या ये पाप है कि कोई हवन ना करे? क्योंकि ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि होम या हवन करना ये नित्य कर्म है। नित्य कर्म मतलब डेली ड्यूटी है, डेली रिचुअल्स है, ये रोज करना चाहिए। तो क्या करना पाप है? तो स्वामी जी कहते हैं पाप है, यस, बिकॉज टू व्हाट एक्सटेंट इंप्यूरिटीज कम आउट ऑफ मैन्स बॉडी, पॉल्यूट एयर एंड वाटर एंड कॉजिंग डिजीज, टू इंजरी टू अदर बींग्स, टू दैट एक्सटेंट ही इज कमिटिंग ए सिन। हम प्रतिदिन, ये स्वभाव है हमारे शारीरिक, जो गंदगियां हम धरती में इस धरती में छोड़ते हैं, मतलब रोज हम अपने शरीर से बहुत सारी गंदगियां इस वातावरण को दूषित करने के लिए छोड़ते हैं, जिससे वातावरण दूषित होता है, और ये स्वभाव है। पर उसके लिए हमें प्रायश्चित करने की जरूरत है, उसको, जो हमारे कारण वातावरण प्रदूषित होता है, गंदा होता है। उन दिनों ऋषि मुनियों को इतनी ज्यादा धारणा नहीं थी कि भाई हम कितने बड़े बड़े प्रदूषण करते हैं आजकल फैक्ट्री के द्वारा वगैरह वगैरह, वो नॉर्मल बात करते हैं। जो एक इंसान रोज जिस क्वांटिटी का प्रदूषण फैलाता है अपनी गंदगियों से, वो जब रोज अग्निहोत्र करता है वो उतने परिमाण में वायुमंडल को जो उसके कारण प्रदूषित हुआ उसको वो दूर कर देता है, और इससे उसके जो नेचर के प्रति, समाज के प्रति जो उसने, उसके कारण जो बुराइयां हुई वो उसी खुद से सुधर जाता है। इन अटोनमेंट फॉर दिस ही शुड कंट्रीब्यूट सो मच और इवन मोर टुवर्ड्स द प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर एंड वाटर। अग्निहोत्र उसी का प्रायश्चित है, जो रोज हम गंदगी करते हैं उसका प्रायश्चित के रूप में अग्निहोत्र होता है जो वायुमंडल को शुद्ध करता है। इफ दिस थिंग्स आर गिवन टू ए मैन फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, इट विल डू गुड ओनली टू वन इंडिविजुअल। द अमाउंट ऑफ क्लैरिफाइड बटर एंड एरोमेटिक सब्सटेंसेस विच ए सिंगल इंडिविजुअल कैन मेक यूज ऑफ इज सफिशियंट टू डू गुड टू थाउजेंड्स ऑफ पर्सन्स थ्रू द इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ होम। हम मान लीजिए एक व्यक्ति रोज दो चम्मच या तीन चम्मच घी खाता है वा कुछ और चीजें खाता है, उतने में अगर हम आहुति करें एक खास प्रोसेस से, तो वो जो वातावरण को शुद्ध करता है वो कितने सारे लोगों तक उसका फायदा पहुंचता है। इसलिए आगे कहा, बट इट If men do not eat wholesome substances such as clarified butter, their body and mind cannot be developed. पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम घी खाएं नहीं और सारा आहुति में डाल दें। घी खाना जरूरी है, जो भी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खाने लायक चीजें सब खाना चाहिए, नहीं तो इंसान कमजोर हो जाएगा। Therefore, they should by all means eat such things. किसी भी तरीके से घी वगैरह, आजकल तो घी भी नहीं खाते हैं, हमें मोटा हो जाएगा इसीलिए हम घी कम खाते हैं पर पिज्जा नहीं छोड़ते हैं। ज्यादातर लोगों के घर में घी इसीलिए नहीं यूज होता है कि उसमें फैट होता है, पर हम बर्गर पिज्जा में कभी कंप्रोमाइज नहीं करते, पर घी में ताकत होता है। देयर बॉडी एंड माइंड कैन नॉट बी डेवलप्ड, देयरफॉर दे शुड बाय ऑल मींस ईट सच थिंग्स, बट एट द सेम टाइम होम टू शुड बी परफॉर्म। घी खाएं भी और घी के द्वारा आहुति भी दें, दोनों जरूरी है, स्वस्थ रहने के लिए हम उसका उपभोग करें और वातावरण को शुद्ध रखने के लिए हम उसको जरूर खाएं. इट इज वेरी एसेंशियल इंडीड. हाउ मेनी ऑफरिंग शुड ईच मैन गिव एंड इन व्हाट क्वांटिटी. कितने अगर रोज एक व्यक्ति हवन करे वा कभी करे, जब भी उसका मन करे कि भाई मुझे आज छोटा सा हवन करना है, किसी के हेल्प बिना मैं खुद करूं, तो वो कितना, कम से कम कितना करना चाहिए. एवरी मैन शुड ऑफर एटलीस्ट 16 ऑफरिंग्स एंड ईच ऑफरिंग शुड कंटेन एटलीस्ट 6 मसाज. वो अलग बात है. 16 ऑफरिंग जो कहा, जो लोग यहां यज्ञ में बैठते हैं या घर में करते हैं उनको पता है, जो हवन वगैरह हम करते हैं वो एक विशेष हवन होता है. जो रेगुलर करते हैं, ये जो दैनिक आहुतियां होती हैं उसमें सिर्फ 16 मंत्र होते हैं. 16 मंत्र में आहुति देने के लिए 5 से 7 मिनट से ज्यादा लगता नहीं है. एक आदमी चाहे सुबह शाम अपने घर में एक छोटा सा हवन कुंड रख के, लकड़ियां रख करके, पुस्तक से मंत्र पढ़ के 16 आहुतियां दे सकता है. 5 से 7 मिनट कम से कम इतना जरूरी होता है. इफ मोर स्टिल बेटर, अगर आप ज्यादा दें तो बहुत अच्छा, पर कम से कम इतना जरूर कर सकते हैं. इट इज वाई द ग्रेट आर्यज ऑफ योर सेंट्स, सेजेस, किंग्स, एम्पायर्स एंड अदर्स परफॉर्म्ड एंड कॉज्ड टू बी परफॉर्म्ड बिग होमाज. आप जब पुरानी कहानियां पढ़ते हैं, रामायण महाभारत से लेकर के अलग कहानियां, आप उसको ये नहीं मिलेगा उसमें आपको कोई राजा महाराजा व्यक्ति, किसी के घर में कोई उत्सव हुआ, किसी की कोई खुशी हुई, कोई गम हुआ, तो वो क्या करते थे, तो उनके घर में यज्ञ होता था. अलग अलग तरह के यज्ञ, अश्वमेध राजसूयों से लेकर के हजारों तरह के यज्ञ हुआ करता था. सो लॉन्ग एज द प्रैक्टिस ऑफ होम वाज इन वग्यू, दिस कंट्री ऑफ द आर्यावर्त, भारत को आर्यावर्त कहते थे, रिमेंड फ्री फ्रॉम डिजीजेस एंड वॉज हैप्पी. इट कैन अगेन बी इक्वली सो इफ द सेम प्रैक्टिस इज रिज्यूम्ड. अगर आप में से कोई पुराना कहते ही आप सीधे 500,000 साल पहले चले जाते हैं, ये भारत के लिए पुरानी चीज नहीं. भारत दुनिया में बहुत पुराने देशों में एक है. वो बहुत, उसकी जो सिविलाइजेशन है वो दुनिया में सबसे ओल्ड सिविलाइजेशन में से एक है. हमारे यहां 1,500-2,500 साल जो होता है ये नया माना जाता है, क्योंकि जिसका अगर वेस्टर्न विद्वानों की स्कॉलर्स की माने कम से कम 10,000 से 12,000 साल पुरानी कल्चर है, संस्कृति है. और जो अगर भारतीय ट्रेडिशनल विद्वानों की बात माने तो वो कितने लाखों पुरानी संस्कृति है, लाखों साल की. जिन दिनों से, जब से हमारे यहां वेद आदि शास्त्रों को मानना बंद हुआ, वो खास करके बौद्ध पीरियड में 2,500-2,500 साल से, तब से भारत में जो भारत के लोगों की एक अवक्षय शुरू हुआ. इंटेलेक्चुअली कमजोर हुए, फिजिकली भी कमजोर हुए, मेंटली भी. मेंटली तो हम पूरी तरह एक तरह के गुलामी की मानसिकता में रहते हैं. हो सकता है हमारे पास करोड़ों संपत्ति हो, बहुत बड़े ज्ञान हो, पर अभी भी गुलामी मानसिकता में रहते हैं. आप कहेंगे हम तो नहीं रहते. उसका सिंपल एग्जाम्पल आप देखेंगे, भारत का आज की मॉडर्न इंडिया की कोई भी चीज वो अपनी नहीं है, या तो ब्रिटिश का है या दूसरों से. जो भी जो इंडिपेंडेंट इंडिया में जो कुछ हुआ सब नकल किया गया. हमारे फिल्म इंडस्ट्री में कुछ, कोई भी फिल्म बनता है वो हॉलीवुड का नकल होता है. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन के नकल करके बनाए गए. हमारा हर चीज, हमारे जो राइटर्स होते हैं वो इंग्लिश राइटर की कॉपी करते हैं. हमारे साइंटिस्ट वही पढ़ते हैं जो वेस्टर्न साइंटिस्ट उनको बताते हैं. इसीलिए भारत में आपको एक भी कोई साइंटिस्ट इनोवेशन नहीं मिलता, क्योंकि ओरिजिनल सोच होता नहीं. ये क्या है, ये गुलामी है. जब आप दूसरे की सोच को ही सही मानते हो, खुद के सोच को नहीं, इसका मतलब है कि आपके, हमारे माइंड में कहीं स्लेवरी है. गुलामी का अर्थ नहीं कि किसके घर में नौकरी करना, गुलामी का अर्थ यह है कि आप किसी को 100% ऑथेंटिक मानते हो पर खुद को नहीं मानते हो, खुद को नहीं मानते हो। और ये स्लेवरी का एक सबसे बड़ा सिम्टम होता है। एक दास का, एक नौकर का, एक गुलाम का सबसे बड़ा लक्षण है कि वो खुद को कुछ नहीं समझता। तो ये जो भारतीय मानसिकता है ये तभी शुरू हुई जब हमने अपने चीजों को, इसका अर्थ नहीं कि यज्ञों को रिकवर नहीं, तो यज्ञ की चर्चा चल रही है, ऐसे हजारों चीजें हैं जो हमारे अपने थे जिनको हम बढ़ा सकते थे, रिकॉग्नाइज कर सकते थे, उसको मॉडर्न एज के साथ उसको कंटेम्प्रेरी बना सकते थे, उसको रिफाइन कर सकते थे, पर हमने कुछ नहीं किया। ना मेडिकल साइंस में हमारे अपने शास्त्र थे आयुर्वेद, किसी ने आयुर्वेद को रिफाइन नहीं किया मॉडर्न एज के साथ, हमने सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न कल्चर को अपनाया। चाइना में किया उन्होंने अपने अपने ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम को, आज वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाते हैं सिर्फ अपने ट्रेडिशनल मेडिसिन को दुनिया में बेच के। अमेरिका में हर शहर में आपको चाइनीज मेडिसिन मिलेगा, पर दुनिया के ज्यादातर वेस्टर्न देश में आयुर्वेदिक मेडिसिन बैंड हो जाते हैं। क्यों? वो मॉडर्न एज के हिसाब से ना उसमें रिसर्च होता है ना उसको रिफाइन किया जाता है, जो थोड़ी बहुत लोग करते, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। तो इस तरह के कारण से भारत में तब से, जब से ये जो प्राचीन सभ्यता संस्कृति खत्म हो गई बा हमने मानना कम कर दिया, उसके जगह नई नई चीजें सब्स्टिट्यूट किया, तब से हमारे देश में हर तरह की समस्याएं शुरू होने लगी। तो आज ये यज्ञ के ऊपर एक छोटा सा विचार था। आप लोगों को कभी इसमें डाउट हो तो आप लिख करके या पूछ सकते हैं। हम नेक्स्ट प्रवचन